और जो आज मैंने आपके लिए तरतीब सिलेक्ट की है, अल्लाह करे कि इसका हक दे सकूं, बहुत सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि आदत है आज के हर चीज़ की खोज में जाने की, सारी बुराइयां सामने रख के घंटों सोच के जो मुझे असल में जो सारे इंसानी मामलात में हमारे अखलाकी ऐब दिखते हैं उसकी रूट कॉज पहली वजह तकब्बुर, खुद पसंदी। अना खैरुम मिन्हु, किसने बोला था? इबलीस का जुमला था, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलकतनी मिनन्नार, मुझे आग से पैदा किया। व खलकतहु मिनतीन, रीजनिंग की, अक्ल इस्तेमाल की, और लिहाजा मैं बेहतर। और उसको ये पता ही नहीं कि आग तो निरी डिस्ट्रक्टिव थिंग है और मिट्टी तो प्रोडक्टिव है, हर प्रोडक्टिविटी तो मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो क्या पता चला कि खुद पसंदी और तकब्बुर ये बीज है, या बल्कि जिसको कहें ये कीड़ा है, जब दिमाग में घुस जाता है तो कोई अच्छा नहीं लगता। और अगर पीछे मैं लेके चलूँ ना आपको, अच्छी बात आज जो पढ़ी थी उसमें दो पहली चीज़ें क्या पढ़ाई थी? अखलाक हसना में सब्र शुक्र। जब आप थैंकफुल होंगे ना अल्लाह के, तो आप बंदों के भी होंगे। ये भी आप पढ़ चुके, मल्लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्ला। खुद पसंदी का ऑपोजिट क्या है कि आप किसी के लिए शुक्रगुजार है ही नहीं। आप ये नहीं करते कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, आप उसके लिए हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं। आप उसकी नेगेटिव चीज़ों को इतना बड़ा हाई लेवल जूम इन जूम आउट को भी सामने रख ले, इतना बड़ा कर लेते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत कितनी है, आपके लिए वो जान कितनी मार रहा है, आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा सा समझें, हमारा जिस्म, आंखें हैं, है ना? आंखें क्या करती हैं भाई? देखती हैं। हम सब आंखें दिखाते भी बड़ी हैं, ये अलग बात है कि कोई हमारी आंखें दिखाने से भी खुश ना हो, लेकिन चलिए, आंखें देखना दिखाना तो एक मुहावरा। आपको पता है कि रियल में ये आंख क्या है? यानी जब मैंने ये प्रैक्टिकली, हमने लैब में ये एक्सपीरियंस किया था, भैंस की आंख लाए थे, तो ऐसे जैसे थ्रिल थ्रिल होती है ना चीज़। और जब उन्होंने, हमारे जो भी टीचर थे, इंस्ट्रक्टर थे, जस्ट एक पिन हल्की सी उन्होंने उसमें ऐसे की, उसकी जो बाहर की झिल्ली थी ना, जो बाहर के जो होता है ना, तो वो सब पानी बन के निकल गया। ये आंखें पानी है, पतली सी झिल्ली में, तभी तब देखे ना, यूं यूं जैसे आप किसी बैलून में पानी डालें तो उसको हाथ से इधर करें तो इधर हो जाता है, इधर करें तो इधर, ये पानी है, इसके अंदर सब पानी है। अल्लाह ना करे अगर कोई चीज़ या आंख की झिल्ली को रप्चर कर दे तो ये पानी बह जाएगा, आंख बह गई, कहते ना आंखें बह निकली, ये वही होता है। चलिए, बहुत ही उलझन आती है, ऐसे लग रहा था जैसे जल निकल रहा है, गंदा लेसदार मादा। कान क्या है? कुरकुरी हड्डी है ना, आप देखिए कान ना तो बोन है। अब आप देखिए कि कुरकुरी सी एक हड्डी है, चलिए कान तो बिल्कुल ही आंखों से फर्क हो गए। नाक क्या है? ये सर पे एक, मुंह पर डंडा सा, ये एक पहाड़ रखा हुआ है। आप कहते हैं कि तसव्वुफ की जुबान में इस जिस्म को पूरी कायनात कहते हैं, वो कहते हैं ना एक आलम बाहर है तो एक आलम इधर है, तो उसमें वो क्या कहते हैं, ये जो नाक है ना ये पहाड़ है जमीन, और ये तुम्हारी स्किन जो है ना ये मट्टी है, और जो नाक है ये पहाड़ है, और आंखें चश्मे हैं, और इस तरह की बातें, कान जो ये गा रहे हैं उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। आप पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा सारी बातों का मकसद, अब ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं ठीक, और एक अल्लाह ने 5-6 फुट के जिस्म के ऊपर इनको मुनासिब जगहों पर लगा दिया, ज़रूरत है ना? अब मिसाल है, लड़ाई हो गई कान की आंखों से, तुम कैसी हो? तुम तो निरा पानी हो, और ये क्या गोल गोल काले काले घुमाते हो बीच में सफ़ेद डब्बों में, मुझे देखो मैं कैसा हूँ, और तुम तो सामने हो और मैं तो ऐसे छुपा हुआ। मुझे बताइए, कभी कोई सोच भी सकता है कि अपनी आंखों को निकाल कर बाहर फेंक दे? जू के मेरे कानों को नहीं पसंद, या मुझे नहीं पसंद, चले आंखें तो बड़ी पसंद है, नाक नहीं पसंद हमें, बहुत मुश्किल में डालता है, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि ये हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने मुझे आपको एक दूसरे की ज़रूरत बनाया। सबसे पहली बच्चे की ज़रूरत माँ है, बाप, घर के कुछ अफराद जो हमारी तालीम व तरबियत में बहुत हिस्सेदार होते हैं, फिर इसी तरह से एक दो करते जाइए, आगे से आगे बढ़ते जाएं। मैं और आप इंसानों की इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, और याद रखिए 100% मेरे जैसा दूसरा कोई होगा भी नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिस्म में कानों की जगह पे भी आंखें ही लगा दें, नाक की जगह पे भी आंखें ही लगा दें, क्या सोचकर कि चलो सब एक तो होंगे। आप सोचिए ना, अगर सारे एक साथ काम करने लगे, एक ही जैसे हों, तो फिर सारे तो एक ही काम करेंगे। अब कानों की जगह आंखें लगा दें तो क्या फिर कान बन जाएंगी वो? नहीं, हमें इंसानों की ज़रूरत है। और इस्लाम का एक बुनियादी खूबसूरत असूल जो मुझे सीरत में मिला है, काट फेंकना नहीं है, इसलाह कर लो। नबी सल्लम का जो स्टाइल था ना, रिफॉर्मेशन का था, आज भी इस्लाम का यही है। जिधर गए, जिस ज़मीन के टुकड़ों पे गए, फतह किया, क्या किया, कॉन्कर किया, अमन से हो गया या किससे हो गया, इसको पीछे कर दीजिए। असल में बाद में क्या था कि वहाँ के सिस्टम की बुराइयाँ निकाली, बस खूबियाँ डाल दी। काट के नहीं फेंका हमारे दीन ने। याद रखिए, कोई कहता है इस हाथ को काट के फेंक दो, इस नाक को काट के फेंक दो, नहीं होगा। फिर आपको पता चलेगा कि नाक क्या करता है। इवन मैंने पढ़ा था एक जगह, गलत है कि सही, कि कनाडा में कुछ साल पहले उन्होंने मॉस्किटोज को ख़त्म कर दिया कि नहीं हमें चाहिए। तो जूं ही मॉस्किटोज मरे तो वहाँ कोई दो चार और बीमारियाँ इतनी आ गई। ये मैंने 2-3 साल पहले की बात पढ़ी थी। क्यों? कि उन्होंने कहा कि वो जो मॉस्किटोज थे जो मलेरिया तो लाते थे, लेकिन वो कितने और बैक्टीरिया को खा जाते थे। जब वो मर गए तो मलेरिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन और चार चीज़ें आ गई। क्या पता चला कि हम में से हर एक ज़रूरी है। समटाइम हम ये सोचते हैं कि आई एम नॉट इन द राइट कंपनी। बच्चे से पूछें, कई बच्चे होंगे वो कहेंगे मैं ठीक घर में नहीं पैदा हुआ, आई डोंट थिंक सो, ये मेरा भाई होना चाहिए था छोटा, और ये छोटी बहन तो मुझे एक आंख नहीं भाती है, तो मेरी सारी चीज़ें ख़राब करती है। आप कभी अपने बच्चों से पूछ के देखें। वो जैसे कहते हैं ना कि एक कहते क्या, मैंने ये भी कहीं सुना ही था, किसी इंग्लिश स्पीच में सुना था, एक स्पीकर से वो कहने लगा कि एक औरत थी तो उसके 14-15 बच्चे थे, 14 बच्चे थे, तो हर साइज़ का बच्चा। तो जो बड़े बच्चे थे उनको बड़ी शर्म आती थी कि हमारे इतने बहन भाई क्यों, जहाँ गए लाइन की लाइन गाड़ी से निकल रही है, और तो वो बड़े शर्मिंदा होते थे। तो एक दिन जो उसका बच्चा था कोई 6-7 साल का, जिसको ज़रा सा शोर आया, उसको भी शर्म आनी शुरू हो गई, तो उसने कहा कि मॉम व्हाई डू यू हैव सो मैनी किड्स, मम्मी आपके इतने ज़्यादा बच्चे क्यों हैं। तो माँ ने उसे एक सवाल किया था कि फिर मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए था, वेयर डिड शुड आई स्टॉप, तो कहने का आफ्टर मी। दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। मैं पैदा हो जाती, बाकी ना होते। याद रखिए, मैं अपना एक पर्सनल आपके साथ फोबिया डिस्कस करती हूँ। स्क्रीन के ऊपर अक्सर स्क्रीन सेवर्स आ जाते हैं ना, तो उसमें ग्लोब होता है, आई लव ग्लोब। और पहले डेस्कटॉप्स होते थे ना, तो हमारा घर था इधर ही थे, अमेरिका में ही थे हम लोग, तो मेरे हस्बैंड का जो कंप्यूटर ना, उसके ऊपर जब भी वो थोड़ी देर स्टिल करते थे ना, तो उसमें ग्लोब आ जाता था, और वैसे रिवॉल्विंग घूमता घूमता, जैसे आप जब भी आप देखे सेटेलाइट पिक्चर्स। मैं जब अकेली होती थी ना घर में, तो मैं उस कमरे में जाती थी और ग्लोब देखती थी, तो मुझे डर लगता था, मुझे समझ नहीं आता था क्यों, ग्लोब ही है ना। लेकिन फिर मैंने उसको डिस्कवर किया, ग्लोब है अंदर, इंसान नहीं है। मुझे ऐसे लगता था कहीं समंदर में डूब जाऊंगी, गिर जाऊंगी। इंसानों के बगैर दुनिया इतनी खौफनाक लगे हमें। आप घर से बाहर निकल, आप कहते हैं रश बहुत है, हम कहते हैं एक दिन सारी गाड़ियां बंद कराते हैं, आप जाइए अकेले, आपको खौफ होएगा। आज कर्फ्यू है, आज कोई मैच हो रहा है घरों में, हमें इसी टकराव में बच बचा के जीना है। दिस इज आवर जिहाद। और कहते हैं ना कि तुंद ये बादे मुखालिफ से ना घबरा के ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिलीव मी, वो लोग आपके मोहसिन हैं जो इरिटेटिंग है, और आप उनकी वजह से इरिटेट होने के साथ साथ एनर्जी भी लेते हैं। दो चीज़ों को रगड़ के देखिए, ये देखिए अभी भी करेंगे ना, तो मेरी दोनों उंगलियां गर्म हो गई हैं। हम बिल्कुल ठंडे होके बैठ जाएं अगर हमारे इर्द गिर्द फ्रिक्शन ना हो। करना क्या है, वही करना है जो अभी करके यहाँ पहुँचे हैं। तो खत्ता तुकाती क्या कहते हैं कि उनसे बचो, बचना बचाकर, तो कात ही के लफ्ज़ हैं। जितना बच बचा के इस दुनिया से गुजर गए, वरना देखिए इसमें नेक और बद की भी बात नहीं है। इमेजिन कीजिए कि नबी सल्लम के सहाबा अभी आपने 10 पढ़े हैं ना, अशरा मुबशरा, और आपने अगर वो भी पढ़ी है हयात सहाबा के दरख्शां पहलू, 100+ सहाबा, आप देखिए हर सहाबी की मुख्तलिफ खूबी थी और कभी कभी दो लोगों की नहीं लगती थी। स्ट्रांग लीडरशिप होती है ना, जब स्ट्रांग लीडरशिप होती है तो जितनी मर्जी छुरियाँ तलवारें आप एक जगह जमा कर लें कुछ भी नहीं होगा। बस मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि हम पैकिंग करते हैं ना अक्सर सफ़र में, अब सफ़र में कोई चीज़ें ऐसी हैं जो टूटने वाली हैं, कुछ तोड़ने वाली भी हैं, इट्स ओके, यू कैन कीप देम इन द सेम बॉक्स। करना सिर्फ क्या है, कोई ग्लासी चीज़ है तो उसको ज़रा वेलवेट के और फोम के अंदर लपेट के डाल दीजिए ताकि उसको कोई टच ना करे, और अगर कोई बड़ी सख्त चीज़ है तो उसको ऐसी जगह नीचे रखिए कि वो बीच में ना करे। डालना सबको एक ही बॉक्स में, ये ज़िंदगी का असूल है। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नाम करके ज़ाया ना करें। ये जो फैसला होता है ना, आई कैंट, आई एम लिविंग, मैं इस घर में नहीं रह सकती, चले हस्बैंड वाइफ हैं तो डाइवोर्स, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम थी तो मुझे अलग कर दें, मैं इस सास के साथ नहीं रह सकती, मैं इनकी शक्ल नहीं देख सकती, आई नीड स्पेस और दिस एंड, ये अपनी हार होती है। ज़िंदगी का ये असूल बनाएं कि किसी एक बंदे किसी एक किस्म के हालात में भी मैं ये ना कहूँ कि मैं इसके साथ नहीं चल सकती, अपने ऊपर लें। किसके साथ आपकी नहीं बनती, किसके साथ आपकी नहीं निभती, आज से आप अपने अखलाक में ऐसी तब्दीलियां लाएं कि आप किसके साथ निभे। आप कहते बुराई तो उसमें, मैं क्यों बदलूं खुद को। देखिए नबी सल्लम की ज़िंदगी की मिसाल कुरान में पहले ही पारे में पढ़ के आए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना, ऐ ईमान वालों राइना ना कहा करो, क्या हरज था राइना कहने में। हरज ये था कि कुछ लोगों ने दिल का बुग़्ज़ दबाते हुए राइना को राइना कहना शुरू कर दिया, तो आयत क्या होनी चाहिए थी, या अय्युहल यहूद ला तकूलू राइना, ऐ यहूद नबी को ये ना कहा करो हमारे चरवाहे। सबको समझ आ रही है ना बातें, सहाबा को रोक लिया कि तुम वो लफ्ज़ ही छोड़ दो, बात समझ गए। इस्लाम का असूल यह है कि हर वो चीज़ जो फ्रिक्शन पैदा करे और आपकी नेकी, आपका इत्तेहाद, आपकी यूनिटी खतरे में पड़ जाए, लीव दैट थिंग, इट्स बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट देन लूजिंग अ पर्सन। बहुत सारे लोगों को उस वक्त साथी याद आता है जिसके साथ एक वक्त था कि आप कहते थे मैं इसके साथ रह नहीं सकती, गिव मी डिवोर्स, डिवोर्स मी प्लीज, आई नीड डिवोर्स। डिवोर्स ऐसे लगता है जैसे कॉफी का कप है जो आप मांग रहे हैं, लेकिन जब मिल जाती है ना तो फिर आप रोते हैं, कहते हैं चले कोई था ना, झगड़ता था लड़ता था कोई था, आज तो घर में नहीं है। वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। याद रखिए ये हमारा नेमतों के साथ मामला है, नेमत होती है मानते नहीं है। आप जिस बंदे को अपने लिए मुश्किल समझ रहे हैं वो नेमत है, बिलीव मी वो नेमत है, ठीक है आपकी उससे नहीं लगती, यही तो खुशी है। अगर आपकी उससे लग गई तो जो कमी आप में वो उसमें भी आ जाएगी और वो काम नहीं होगा। हर बात को अपने लिए खैर समझें। मसा आप देखिए कि वही जो वाक्य आपने सुना होगा कि एक वज़ीर था तो उसको हर बात में ये कहने की आदत थी, जो हुआ अच्छा हुआ, वट हैपन दैट वॉज़ गुड। एक दिन उस बादशाह की उंगली कट गई, थोड़ा कट आ गया, हस्बे आदत वज़ीर के मुंह से निकल गया जो हुआ खूब हुआ। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि भाई कमाल हो गई, मेरा हाथ कटा तुम्हें क्या हुआ। उसने पकड़ कर वज़ीर को डाल दिया जेल में, और उसके बाद एक काफ़िला था उसकी तरफ चल पड़ा, इन्होंने कहीं सफ़र में जाना था। वहाँ जब गए तो वही जैसे एक ऐसे पेगन कल्चर में होता है कि लोग अपने किसी बुत के नाम पे किसी को भेंट चढ़ाते थे, कुरानदाजी करते थे जिसका नाम आ जाता था, वहाँ गए या फिर उनके बड़े सरदार को डालते थे। किसा मुख्तसिर उस बादशाह का नाम नॉमिनेट हो गया कि ये इस बुत के नाम पे इसको भेंट चढ़ाएंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। जब उसको चढ़ाने लगे तो देखा कि बादशाह की तो उंगली पे कट आया हुआ है, कहा ना ना ना, अब सोचिएगा आज हम मुस्लिम पता नहीं क्या अल्लाह के रास्ते में देते हैं, ये तो हमारे और अल्लाह के बीच में है ना, ना 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 हम कटी हुई या ऐबदार चीज़ तो अपने बुत को नहीं देंगे, कोई सालम शख्स लेकर आओ। अब क्वेश्चन ये था कि अब बादशाह नहीं है तो उसके बाद जो भी है उसको ले आओ, तो उन्होंने उसके दरबारियों में जो ज़्यादा अच्छा सेहतमंद था उसको दिया, बादशाह बच गया। जूँ ही बादशाह बचा उसको वज़ीर की बात याद आ गई, जो हुआ सो खूब हुआ। कहने का बड़ा अकलमंद था, अपने लश्कर से कहा आगे नहीं पीछे चलो वापस चलो। अंदर गया, महल में था, जाके वजीर को बाहर निकाला जेल से, माफ़ी मांगी, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ये भी बड़ी बात है किसी का एक्सक्यूज़ कर देना। कहा कि तुमने जो कहा था सच कहा था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगा कि जो तुमने मेरे बारे में कहा था वो तो सच कहा था, ये बताओ कि मैंने भी तो कोई अच्छा नहीं किया, तुम्हें जेल में डाल गया, तुमने इसमें भी ये कहा था जो हुआ खूब हुआ, तो इसमें क्या खूब हुआ? कहने लगा बादशाह सलामत ये तो और भी खूब हुआ। वो कैसे खूब हुआ? कहा जब आपको उन्होंने पकड़ा तो आपकी तो उंगली कटी हुई थी, तो आप ना होते और मैं लश्कर में होता तो कौन मरता? बादशाह नहीं तो वजीर, तो आप मुझे साथ ले जाते तो आज मैं फौत हो चुका होता, तो आपने मुझे जेल में डालकर मेरे साथ अच्छा मामला किया। ये जिंदगी का असूल बना ले। मैं कहती हूँ सीना खोल कर, यानी जिसको कहते हैं ना मर्द है ना कोई, तो चौड़े सीने के साथ खड़ा होकर कह दे आए कोई माई का लाल और मुझसे लड़ ले, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। आपका अखलाक ऐसा हो जाए कि आप दुनिया के किसी बाजार में खड़े होके आ जाओ कि आओ बिस्मिल्लाह, ये आपकी मेरी अपनी जिंदगी का सुकून और इत्मीनान और खुशी है। आपका दिल चाहे दिल दिमाग को ट्रैश कैन बनाइए, कचरे का ढेर बनाइए, कूड़े का डब्बा बनाइए, और चाहें तो इस दिल को एक खूबसूरत वॉज शीशे का बनाकर उसमें एक गुलाब का फूल लगा दीजिए। वॉज शीशे के क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर बाहर से खूबसूरती है। और एक सवाल लिखिए ज़रा, अगर हमारे दिल ये मिट्टी के बर्तन के अंदर ना होते, अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द मसल नूर ही का मिश्कात, मिश्कात है ना, रिब्स, पहले स्किन फिर रिब्स के अंदर चेस्ट, चेस्ट के अंदर हार्ट, अल्लाह ने इतने पर्दों में क्यों छुपाया हुआ है कि मेरे बंदों के दिलों में जो गंदगी है वो ना ही दिखे दूसरों को। जैसे हम भी अक्सर घर के जो खुफिया खाने से इससे चीज़ें होती हैं उनको हम इधर उधर डाल देते हैं। जी आपका सवाल बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं सुना मैं उनके लिए दोहरा देती हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी को मुस्तकिल ओवरलुक कर रहे हैं और वो उसे मिसयूज़ करके आपके ऊपर चढ़ाई करता है। देखिए मैं आपकी इस बात की बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ आवर पेरेंटिंग प्रॉब्लम। अगर बचपन से आपको ये सिखा दिया जाए ना कि क्या बात सुन के चुप रहना और क्या बात नहीं सुननी, तो ये इशू नहीं होगा। आपके पास कंट्रोल होना चाहिए अपना, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं कब करें, खड़े खड़े भागते दौड़ते बात करनी बात करनी, भाई सब्र कीजिए, इट्स माई टाइम, लेट मी चेक, कैन आई गिव यू दिस। आज हमारी बहुत सारी एनर्जी हमारे लोग ले जाते हैं, दूसरे लोग ले जाते हैं, और हम ये सोच रहे होते हैं कि ना कैसे करें, शर्म आती है। नहीं, शर्म नहीं आनी, आपकी हदें आपको बतानी चाहिए। जब काउंसलिंग करते हैं ना लोगों के साथ, तो मैं कई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उनको देती हूँ, मैं आपको भी सबको ही दे देती हूँ, हो सकता है आपका ये इशू ना हो या कभी हो भी जाए तो आप उसे रिलेट कर सकते, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दूँ। बस आप देखिए कि एक सास है, अपनी बहू को कहती हैं तुम मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती, क्या तुम्हें सारा दिन बाहर रहती हो, तो मेरा बेटा बेचारा सूख के कांटा हो गया, वो पहले भी कांटा ही था, अब आपको ज़्यादा ही लगने लग गया बिलफर्ज, तो माँ की मोहब्बत है, पहले तो आप खुश हो। अब आपकी सास, आप अपने ऊपर सास कह ले माँ कह ले बहू ही कह ले किसी की, कि तुम मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती, वाकई आपके बेटे का तो नहीं रखती, मैं तो अपने शौहर का ख्याल रखती हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, तुम सारे दिन बाहर रहती हो, खाना कौन पकाता होगा, वो बेचारा ये है वो है, अब कर लीजिए। अब वो तो ये बोल गई, अब आप क्या करेंगी, रोएंगी, हाय हाय ये बातें सुना गई, और नहीं और नेगेटिव हो जाए, हाँ हाँ ये बस ये वो, नहीं आप पहली बात सोचें अल्हम्दुलिल्लाह इसको माँ कहते हैं, बच्चा यहाँ तक भी भरा होगा ना उसका पेट, तो माँ कहती खाए ही कुछ नहीं, ये खाता ही कुछ नहीं, ये पप्पू डब्बू शब्बू खाता ही कुछ नहीं, तो इसका था कि आपका हस्बैंड अभी माँ को अपना वो पप्पू शप्पू लग रहा है जो खाता ही कुछ नहीं है। आप देखिए ना कि एक होता है आप कहते ए, बात सुन के मेरे सर से पाँव में आग लग गई, इधर से गई उधर निकली। अब आप देखिए कि इसमें आप नेगेटिव हों कि पॉजिटिव हों, एक अलग चीज़ है। पहली बात है हमेशा ज़िंदगी का असूल रखें, अपने आप को ठंडा रखें, सर ठंडा पाँव गर्म, ये हमारे बड़े कहते थे, सर ठंडा रखिए और पाँव गर्म, और कल भी मैं किसी से बात करी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग ठंडा और दिल साफ, दिल गंदा ना हो। आप हर बंदे के साथ काम कर सकते हैं, हर एक जगह आप चल सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि दुनिया में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसकी मैं शक्ल नहीं देख सकती, जिसके साथ मैं चल नहीं सकती, जिसके साथ मैं खड़ी नहीं हो सकती। करना क्या होगा? अब आप देखिए कि एक सूरत यह है कि आप किसी की बात सुनकर परेशान हो गए। जब आप किसी की बात सुन के परेशान हुए ना, आपने अपना सारा कंट्रोल उसको दे दिया। इट्स जस्ट लाइक हाईजैकिंग, लिख लें ये जुमला। हाईजैकिंग जहाज़ों में नहीं होती, ब्रेन में भी होती है। दिन में कई बार जहाँ हम मिल के रहते हैं ना लोगों के साथ, हम हाईजैक हो जाते हैं। कैसे हाईजैक होते हैं? वो हमारा माइंड ले लेता है, और जो ही आपने अपना कंट्रोल छोड़ा, आप उसके इशारों पे चलेंगे। गलत, सही, ठीक, बे वो नहीं, डोंट लूज योर कंट्रोल। अभी गाड़ी चला के आए ना, कितनी दफ़ा मैं तो जिस दिन से आई हूँ ज़्यादा ही आयतुल कुर्सी पढ़ के बैठती हूँ ड्राइविंग में। जितनी रश ड्राइविंग इधर होती है, मुझे उसमें आदत भी नहीं रही। और अब की छोटी छोटी सड़कों पे हम जाते हैं और लोग कहते हैं रश है, तो मेरी हंसी निकल जाती है। ये रश नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कितना, जब खासतौर पे हाईवे पे आते हैं कितना ज़्यादा रश होता है। ये भी मुझे बता रहे थे कि 60 की लिमिट है, लेकिन मोस्टली पीपल 70 to 80 चलाते हैं। ठीक है, अब आप करें क्या कि आप अपना अगर कंट्रोल छोड़ देते इस गाड़ी का, तो फिर क्या होता आपके साथ? वही होता जो मोस्टली होता है। आप कहते हैं फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं भी हूँ बोली। भाई आप क्यों बोले? आपको गुस्सा क्यों आ गया? आप इतने कमज़ोर हैं कि इतनी जल्दी में आपने गिव अप कर दिया? एक तरफ तो ये है, अब उसी मिसाल को कंटिन्यू करें। जब आपको किसी ने ऐसी बात की, रीजनिंग करें। देखो ना, उनको अपने बेटे से प्यार है ना, तो माएँ तो ऐसी ही होती हैं, एक बात। फिर दूसरी सूरत आप ये है कि आप एनालिसिस करें। माइट बी, देखिए 100 नहीं, 10 to 20% माइट बी इट्स ट्रू जिसने आपको बात की। कि चूंकि हस्बैंड कुछ कहते नहीं है, तो आप काफ़ी ज़्यादा उनके मामले में केयरलेस हो चुकी हैं। पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल, कोई इसमें झूठ नहीं होता। एनालिसिस कीजिए अपना। आपने एनालिसिस भी कर लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको लगता नहीं ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है। अब आप क्या करें? आप अपनी सास के पास जाएं, प्यार से उनका हाथ पकड़ें, रियली करके तो देखिए। अम्मी, मामा, मम्मी, जो भी आप अपनी सास को कहते हैं, आपकी बात से मेरा दिल बड़ा दुख है। और अगर सच्चे होंगे ना, तो आपके दो आंसू भी निकल आएंगे। करके देखिए, आपके साथ रहने वाले किसी बंदे ने आपको मिसअंडरस्टूड किया और अपनी लिमिट्स क्रॉस करके आपके साथ रूडली बात की ना, मियाँ को ना जाके अंदर खुस 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 करें, अम्मी जी ने ये कहा है, आप भी कहें, वैसे मेरा नाम ना लीजिएगा। तो क्या वो उसको गैब से कोई इल्हाम हुआ है कि ये सारा इशू है? बाज़ औरतें पहले अपने हस्बैंड को जाकर खूब गर्माती हैं, फिर कहती हैं मेरा नाम ना लीजिएगा। ये भी उस बेचारे को आप मुश्किल में डाले हुए, डबल मुश्किल में। वो नहीं, मियाँ को तो बीच में आने ही ना दें। और आप, एक सूरत है, आप बदतमीजी करें। आपको क्या पता, ये मैं इनके कितने लाड देखती हूँ, कितने। आप बस वो अम्मी जी का हाथ पकड़ लें, जुबान खुद ही रुक जाएगी। आप उनको लम्स से महसूस कराएं, अम्मी जान आपकी इस बात से मेरा बहुत दिल दुख है और मेरे दिल में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है और मैं ये करना ही चाहती हूँ। बात ऐसी नहीं है, यकीन करें, आप करें, अम्मी जी को अपनी पड़ जाएगी। नहीं, ये भी ऐसा ही है, ये तो शुरू से ही खाता ही नहीं है। बात ख़त्म। देखिए इधर एक कोड बना लें, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये जो आप मैं दीन सीखने बैठे हैं, ये आज उसका क्लाइमेक्स चल रहा है। और अगर ये ठीक है ना, तो पीछे इंशाल्लाह फिर इबादत और अकायद भी ठीक होंगे। हम अपनी जंगें खुद लड़ें, ये भी एक कोड वर्ड है। अगर आपको इंसानों की इस दुनिया में जीना है, डोंट मेक एनी वन कि जिसके पाँव पे पाँव रखकर आप खड़े हों और आपका कद लंबा हो। हर दरख्त को अपनी जड़ों पे खुद खड़ा होना पड़ता है। एक पत्ता अगर दरख्त से उतर गया ना, तो अब आप उसको एल्फी से भी चिपका देंगे, वो उसके साथ नहीं होगा। तो कोशिश करें कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई गलत कहे ही ना। और मेरा यकीन है कि अगर ये सानहा एक दफ़ा ऐसा हो गया, अगली रेस्ट ऑफ लाइफ आपकी अम्मी जी आपको आपके हस्बैंड के बारे में ये तो नहीं कहेंगी कि आप उसका ख्याल नहीं रखती, कुछ और कह लें तो आप उसका भी इलाज कर लीजिएगा। बिलीव मी, ये एक दफ़ा वैक्सीनेशन देना होता है। फिर इसके बाद फॉरगिव फॉरगेट, मटी पाओ। जब हम बहुत ज़्यादा, अब ये देखें ना कि खुद पसंदी और तकबर पर मैं लेके आपको आना चाह रही हूँ, जब अम्मी जी के दिल में था कि मैं बहुत अच्छी केयर टेकर ऑफ माई सन, तो ये अच्छी नहीं, तो फिर ये ख्याल आएगा ना, तकबुर, बढ़ाई, खुद पसंदी। गीबत हो नहीं सकती जब तक खुद पसंदी ना। ये सारी 18 लफ्ज़ों की लिस्ट जाकर देख लीजिएगा, खुद पसंदी के बगैर गीबत नहीं होती, ताना नहीं दिया जाता, इल्ज़ाम नहीं लगते, लैग पुलिंग नहीं होती। जो नेगेटिविटी होती है उसकी रूट ये है कि मैं अच्छी हूँ ना, तुम नहीं अच्छी, इसको ख़त्म कीजिए। और जिस दिन आपने इसको काबू पा लिया, इंशाल्लाह बाकी मामले दुरुस्त होंगे। तो खुद पसंदी क्या है? अपने आप को ओवर लाइक करना। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, आप देखिए कि आप और मैं सब यहाँ सीधे खड़े हो जाएं तो हम सबको अपना अपना कद समझ आ जाएगा ना, कौन किससे लंबा है। कोई फ्यू इंच लंबा होगा, कोई छोटा होगा, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। सेकंड एग्जांपल लीजिए, एक पहाड़ है, एक शख्स उस पहाड़ पे खड़ा, हम ही में से जिसका कद मिसाल है कि 5 इंच था, नाप लिया उसका, सबने नापा। अब वो यहाँ से उठकर एक छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो गया, टॉप ऑफ द हिल खड़ा होगा, उसको क्या लगेगा कि वो आपसे ऊंचा हो गया। उसको आपको यूँ देखना पड़ेगा ना, नीचा दिखना होगा ना, तो आप सब उसको जो पहले बराबर भी थे ना, वो उसको छोटे लगेंगे, और वो दिल में क्या खुश हो रहा, हाहा, इनको मुझे यूँ देखना पड़ रहा। आप उसको यूँ देखेंगे, वो कहेगा देखा मैं कितना ऊंचा हो गया हूँ। ही इज़ थिंकिंग समथिंग एल्स बट यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स। वो क्या सोच रहा है कि वो बंदा आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जब आपके बराबर था तो आपको अपना बराबर दिखा 5 फुट का, तो जब पहाड़ी पे खड़ा वहाँ देखेंगे तो वो शायद 2 फुट का दिखे। जहाज़ नीचे बड़ा होता है ना, ऊपर छोटा हो जाता है ना, ये है मुतकब्बिर। मुतकब्बिर को सब छोटे छोटे कीड़ियाँ मकोड़े दिखते हैं, और ये सोचता है मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन लोगों को वो असल से भी छोटा दिखता है। अपने दिल से ये सब निकालना है। पहली बात याद रखें कि ये आपके मेरी है ही नहीं चीज़। अल्लाह के नबी की हदीस नोट कीजिएगा, हदीस कुदसी है इब्ने माजा 4174, किबरियाई अल्लाह की चादर है। अबू हुरैरा से ये रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाता है नबी सल्लम से ये बातें, अल किबरियाओ रिदाई, रिदा कहते हैं चादर को, शॉल। अल्लाह ताला फरमाता है किबरियाई मेरी चादर है और अजमत मेरा आज़ार है, ट्राउज़र। जो कोई इनको मुझसे छीनेगा मैं इसको जहन्नुम में डाल दूंगा, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि तकब्बुर क्या, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा जूता पहनना? नहीं, तकब्बुर क्या है, हक से मुंह मोड़ना। इब्ने मसूद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस पर एक शख्स ने कहा कि एक इंसान चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, इसके जूते भी अच्छे हों, तो आपने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर तो हक से मुंह मोड़ने और दूसरे लोगों को कमतर समझने का नाम है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 265, इसको ज़िंदगी का गोल बना लीजिए। ये बात इतनी सच्ची है, और वो कैसे कि एक इंसान के सामने हक आया, हक क्या है, या उसने किसी का हक देना था, या कोई हक मांगने आ गया, या अल हक के सामने खड़ा हुआ, मैं नहीं पढ़ता नमाज, ये है बतर, आई डोंट केयर, आई डोंट नीड इट, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू मच टू डू, आई हैव टू गो समवेयर एल्स, ये एटीट्यूड है तकब्बुर। और लोगों से मुंह फेरना क्या है, अच्छे कपड़े पहन लिए, अब किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, जरासीम लग जाएंगे हमें, अगर नमाज पढ़ी तो कपड़ों में रिंकल्स आ जाएंगे, ये है तकब्बुर, ठीक है। सवाल पैदा होता है कि तकब्बुर कैसे होता है? बदतरीन तकब्बुर अल्लाह की आयतों को सुनकर मुंह फेरना। सूरत लुकमान 6:7, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी, लोगों में कोई ऐसा है जो गाफिल कर देने वाली बातों का खरीदार बनता है, ताकि इल्म के बगैर लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहका दे और इनका मजाक बनाए। आगे लिखा है कि जब हमारी आयात इसको पढ़कर सुनाई जाती हैं, तकब्बुर से मुंह मोड़ लेता है, गोया कि इसने इनको सुना ही नहीं, इसके कानों में बहरापन है, फिर इसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। तो क्या पता चला, बदतरीन तकब्बुर के, आपसे ये सवाल असाइनमेंट में पूछा जाएगा, तकब्बुर की बदतरीन सूरत क्या है? कुरान का हुक्म आपके सामने आए और आपके नो 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 आई कैंट, इट्स नॉट पॉसिबल, आई हैव डाउट्स अबाउट दैट, एवरीबॉडी इज़ डूइंग दिस। ज़रा सोचिए इस तारीफ पे लेकर देखें कितने लोग मुतकब्बिर हैं।